एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो दिखती तो नहीं पर है हमारे चारों ओर, हमारे फोन में है, हमारी कारों में, यहाँ तक कि हमारे शहरों की प्लानिंग में भी। ये है स्थानिक कंप्यूटिंग यानी स्पेशल कंप्यूटिंग की दुनिया।
बिल्कुल। और इस दिलचस्प विषय को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही अहम किताबें हैं। पहली स्पेशल कंप्यूटिंग अ पैराडाइम शिफ्ट और दूसरी स्पेशल कंप्यूटिंग द थर्ड वेव। और देखिए दोनों के लेखक भी वही हैं, शशि शेखर और पामेला वोल्ड। तो हम इन दोनों के जो मुख्य विचार हैं उनको मिलाकर आज बात करेंगे।
हाँ, और पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये स्थानिक कंप्यूटिंग है क्या भला, और आज ये अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई है?
मतलब हम सब रोज गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं।
हाँ बिल्कुल, कैब बुक करते वक्त अपनी लोकेशन भेजते हैं या फिर खाना मंगाते हैं तो देखते हैं रेस्टोरेंट कितनी दूर है। ये सब असल में स्थानिक कंप्यूटिंग ही तो है ना?
है ना?
सही बात है, ये तकनीक पर्दे के पीछे से काम कर रही है और जिस तरह हम दुनिया को समझते हैं या उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं उसे बदल रही है।
तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस अदृश्य सी लगने वाली तकनीक को थोड़ा समझे, ये कैसे बनी, कैसे काम करती है और इसके मायने क्या हैं हमारे लिए और समाज के लिए भी।
हाँ बिल्कुल, पर इससे पहले कि हम तकनीक में और गहले जाएं, थोड़ा लेखकों के बारे में जान लेते हैं।
हाँ ये अच्छा रहेगा।
तो एक तरफ है शशि शेखर, ये स्थानिक डेटाबेसेस GIS मतलब ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स और स्थानिक डेटा माइनिंग, इन सब चीज़ों के दुनिया भर में जाने माने एक्सपर्ट हैं। कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं और इनके काम ने आप कह सकते हैं इस पूरे फील्ड की नींव रखी है, तो इनकी बातों में वो एक तकनीकी गहराई दिखती है। और दूसरी तरफ है पामेला वोल्ड, वो एक लेखिका और संपादक हैं और उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल तकनीकी बातों को भी आम लोगों के लिए बड़ा आसान और दिलचस्प बना देती हैं। उनका काम एक तरह से तकनीक की जटिल दुनिया और हमारी जो रोज़ की समझ है उसके बीच एक पुल जैसा है।
बिल्कुल, और इसीलिए ये जोड़ी इतनी खास है। एक तरफ शशि शेखर की गहरी टेक्निकल नॉलेज और दूसरी तरफ पामेला वोल्ड का उसे सरल समझाने का तरीका। तो इस वजह से स्थानिक कंप्यूटिंग जैसे मुश्किल विषय पर भी वो एक बहुत ही साफ और आप कह सकते हैं भरोसेमंद नजरिया दे पाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि ये क्या है, बल्कि ये भी कि ये कैसे काम करता है और सबसे जरूरी ये क्यों मायने रखता है।
अच्छा, तो इन किताबों का जो मूल आइडिया है वो क्या है? लेखक कहते हैं कि स्थानिक कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटिंग के इतिहास की तीसरी बड़ी लहर है। मतलब जैसे पहली लहर थी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जिनका काम था गणना करना, कैलकुलेशन,
हिसाब किताब।
फिर आई दूसरी लहर डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरनेट, इसने सूचना और कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल दिया।
बिल्कुल, और अब ये है तीसरी लहर स्थानिक कंप्यूटिंग। ये क्या कर रही है? ये डिजिटल जानकारी को हमारी भौतिक दुनिया से जोड़ रही है, मतलब हमारे आसपास की जगहें, चीजें, रास्ते, इन सब के साथ। ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ऐसी जानकारी है जिसका हमारी असल दुनिया से सीधा कनेक्शन है।
हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि स्थानिक कंप्यूटिंग सिर्फ कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी का कलेक्शन नहीं है, जैसे GPS हो गया या मैप्स या AR, ऐसा नहीं है।
अच्छा,
बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जो कंप्यूटर को हमारी दुनिया की जो ज्यामिति है, भूगोल है, उसे समझने की, उस पर सोचने की और उसके साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता देता है। और ये तकनीक अब सिर्फ वैज्ञानिकों या इंजीनियरों तक ही सीमित नहीं रही, ये हमारे मॉडर्न जीवन का हिस्सा बन चुकी है, भले ही हम इसे हमेशा नोटिस ना करें।
तो ये किताब किन बड़े सवालों को उठाती है? ये समझने की कोशिश करती है कि भाई ये जो GPS है, डिजिटल मैप्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारें, लोकेशन वाले विज्ञापन, इन सब के पीछे की मूल तकनीक क्या है? और जब कंप्यूटर्स हमारी दुनिया को इस तरह समझने लगते हैं तो समाज पर क्या असर पड़ता है, खासकर हमारी प्राइवेसी पर, नैतिकता पर, बराबरी जैसे मुद्दों पर। लेखक तो ये तर्क देते हैं कि अगर 21वीं सदी को समझना है तो स्थानिक कंप्यूटिंग को समझना ही पड़ेगा।
किताब की शुरुआत भी इसी बात से होती है कि स्थानिक कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का अगला बड़ा पड़ाव है, एक जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। लेखक बताते हैं कि ये कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गई है, जैसे वो कैब ऐप वाला उदाहरण।
हाँ,
हमारा फोन जानता है हम कहाँ हैं, जीपीएस से मैप पर रास्ता दिखाता है, आसपास कौन सी गाड़ियां हैं, कितना टाइम लगेगा। ये सब स्थानिक कंप्यूटिंग ही है जो बैकग्राउंड में चल रहा है।
और यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है, मानवीय स्थानिक अनुभूति यानी ह्यूमन स्पेशल कॉग्निशन की। मतलब हम इंसान स्वाभाविक रूप से जगह, दूरी, दिशा को कैसे समझते हैं, है ना? हम अपने आसपास की दुनिया का एक तरह का मेंटल मैप बना लेते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
स्थानिक कंप्यूटिंग हमारी इसी अंदरूनी क्षमता का इस्तेमाल करती है। मैप्स ऐसे बनाए जाते हैं कि हम आसानी से समझ लें। लेकिन यहाँ ये भी सोचना जरूरी है कि क्या ये तकनीक सिर्फ हमारी मदद कर रही है, या कभी कभी हमें एक खास तरीके से सोचने या काम करने पर मजबूर भी कर रही है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है। और स्थानिक सोच की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। नक्शे तो हजारों साल से बन रहे हैं। वो दुनिया को समझने के हमारे सबसे पुराने स्थानिक औजार हैं। लेकिन किताब ये भी याद दिलाती है कि नक्शे हकीकत के बिल्कुल कॉपी नहीं होते। वो हकीकत का एक मॉडल होते हैं, एक प्रस्तुति। और अलग अलग तरह के नक्शे दुनिया को अलग अलग ढंग से दिखाते हैं। कोई एरिया सही दिखाता है, कोई दिशा।
इसका एक क्लासिक उदाहरण है, शायद आपने सुना हो, 1854 में लंदन में हैजे की महामारी फैली थी। डॉक्टर जॉन स्नो का काम। उस समय किसी को पक्का पता नहीं था कि हैजा फैलता कैसे है।
अच्छा,
तो डॉक्टर स्नो ने क्या किया, उन्होंने शहर का एक नक्शा लिया और उस पर उन जगहों को मार्क किया जहां लोगों की मौतें हुई थी। फिर उसी नक्शे पर उन्होंने पानी के जो पब्लिक पंप थे उनकी लोकेशन डाली।
अरे वाह!
और पैटर्न एकदम साफ हो गया। ज्यादातर मौतें ब्रॉड स्ट्रीट नाम के एक पंप के आसपास हुई थी। तो उन्होंने नतीजा निकाला कि बीमारी पानी से फैल रही है और वो पंप बंद करवा दिया। सोचिए, सिर्फ नक्शे पर डेटा को सही तरह से देखने से बीमारी का सोर्स पता चल गया और कितनी जानें बची। ये है स्थानिक विश्लेषण की ताकत।
कमाल है। और आज हम जो अपनी लोकेशन इतनी सटीक तरह से जान पाते हैं, उसका क्रेडिट जाता है नेविगेशन टेक्नोलॉजी को। और उसमें भी सबसे खास है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पुराने जमाने में तो नाविक तारों को देखकर या अंदाजे से रास्ता ढूंढते थे।
हाँ, बड़ा मुश्किल रहा होगा।
और आज जीपीएस ये काम चुटकियों में कर देता है। ये काम कैसे करता है? आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और वो लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। हमारा फोन या जीपीएस डिवाइस इन सिग्नलों को सुनता है।
अब क्योंकि हर सैटेलाइट हमसे अलग अलग दूरी पर है, तो सिग्नल को डिवाइस तक पहुंचने में थोड़ा अलग अलग टाइम लगता है, है ना? डिवाइस कम से कम 4 सैटेलाइट से मिले सिग्नल के टाइम के इस फर्क को कैलकुलेट करता है और उससे हमारी 3D लोकेशन यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऊंचाई पता लगा लेता है। इसी को ट्राइलिट्रेशन कहते हैं। इसने वो जो बुनियादी सवाल था ना, हम कहाँ हैं, उसे हल कर दिया। और यही आज हजारों ऐप्स और सर्विसेज का आधार है।
अच्छा, तो अगर जीपीएस हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, तो जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हमें उस कहाँ के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है और विश्लेषण करने में भी मदद करता है।
जीआईएस को आप स्थानिक कंप्यूटिंग का वर्कहॉर्स कह सकती हैं, मतलब जो असल काम करता है। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है लेयर केक वाला आइडिया। हाँ, ये अच्छा है, लेयर केक। कैसे?
सोचिए, केक की कई परतें हैं। एक परत पर शहर की सारी सड़कें बनी हैं, दूसरी पर सारी इमारतें, तीसरी पर मान लीजिए नदी, तालाब, पार्क वगैरह हैं, चौथी पर जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कहाँ घर हैं, कहाँ दुकानें हैं वगैरह।
अच्छा, समझ गया।
जीआईएस क्या करता है, इन सभी परतों को एक साथ देखने और उनके बीच के संबंध खोजने की सुविधा देता है। जैसे हम ये सवाल पूछ सकते हैं, कौन सी इमारतें नदी के बाढ़ वाले इलाके में आती हैं, या फिर कोई नई सड़क बननी है तो उसके 500 मीटर के दायरे में कितने स्कूल आ रहे हैं।
अरे वाह, तो ये स्थानिक सवाल पूछने की जो क्षमता है, यही जीआईएस की असली ताकत है।
बिल्कुल, इससे शहर प्लान करने वाले बेहतर शहर बना सकते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक प्रदूषण के पैटर्न समझ सकते हैं, कंपनियां अपनी नई दुकान के लिए सही जगह चुन सकती हैं। ये डेटा को सिर्फ लिस्ट या चार्ट में नहीं दिखाता, बल्कि नक्शे पर उसके असल कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है। समझने में ज्यादा मदद मिलती है।
और फिर आ गया स्मार्टफोन, और उसने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया, है ना? अचानक से हम सबके हाथ में, जेब में एक बहुत पावरफुल स्थानिक सेंसर आ गया, जीपीएस, कंपास, एक्सेलेरोमीटर।
हाँ,
और इसी ने जन्म दिया लोकेशन आधारित सेवाओं को, मतलब आसपास के रेस्टोरेंट ढूंढना, दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजना या लोकेशन के हिसाब से विज्ञापन देखना, ये सब स्मार्टफोन से ही मुमकिन हुआ।
और इसके बाद आया ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR का दौर। AR क्या करता है? वो असल दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी की एक परत चढ़ा देता है।
जैसे वो फर्नीचर वाले ऐप्स होते हैं ना?
हाँ हाँ देखा है।
दिखाते हैं कि कोई सोफा आपके कमरे में कैसा लगेगा, या वो पोकेमॉन गो वाला गेम, या म्यूजियम में आप फोन का कैमरा किसी चीज पर ले जाएं और उसके बारे में जानकारी आ जाए। ये डिजिटल और भौतिक दुनिया का सीधा मेल है। बिल्कुल। और अब तो स्पेशल वेब या AR क्लाउड जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बात हो रही है, मतलब पूरी दुनिया का एक साझा पर्सिस्टेंट डिजिटल नक्शा जहां जानकारी सीधे भौतिक जगहों से जुड़ी हो। और साथ में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब लाखों करोड़ों जुड़े हुए डिवाइसेस, स्मार्ट होम डिवाइस, गाड़ियां, सेंसर्स, जो लगातार स्थानिक डेटा बना रहे हैं और भेज रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां डिजिटल जानकारी हर जगह है और हमारी असल दुनिया से गहराई से जुड़ी हुई है।
लेकिन जाहिर सी बात है, इतनी शक्तिशाली तकनीक है तो अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां और सवाल भी लेकर आती है ना?
हाँ।
शायद सबसे बड़ी चिंता तो निजता को लेकर है, प्राइवेसी।
हाँ, ये तो है।
लोकेशन डेटा बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ये बता सकता है कि हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, हमारी आदतें क्या हैं, याद कि हमारे धार्मिक या राजनीतिक विचार क्या हो सकते हैं, इसका भी अंदाजा लग सकता है।
और मुश्किल ये है कि इस डेटा को पूरी तरह से गुमनाम, मतलब अनोनिमस बनाना बहुत मुश्किल है। हमारे आने जाने का जो पैटर्न होता है ना, वो एक तरह का स्थानिक हस्ताक्षर या स्पेशल सिग्नेचर बन जाता है। उससे हमारी पहचान पता चल सकती है, भले ही नाम हटा दिया गया हो। किताब में एक बड़ी सोचने वाली बात कही गई है कि स्थानिक कंप्यूटिंग में गोपनीयता सिर्फ डेटा की सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह बिना निरंतर निगरानी और विश्लेषण के अंतरिक्ष में मौजूद रहने के मौलिक मानवाधिकार को संरक्षित करने के बारे में है। मतलब ये सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार का सवाल है।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और फिर सवाल आता है डेटा के मालिकाना हक का। हमारा जो लोकेशन डेटा है उसका मालिक कौन है? हम खुद, या वो ऐप बनाने वाली कंपनी, या फिर वो कंपनियां जो ये डेटा खरीदती और बेचती हैं,
या अपराध की भविष्यवाणी करने वाले एल्गोरिदम कुछ समुदायों को गलत तरीके से टारगेट करें?
हाँ, ये भी मुमकिन है।
तो इन सब मुश्किल सवालों से निपटने के लिए लेखक स्थानिक साक्षरता यानी स्पेशल लिटरेसी की जरूरत पर बहुत जोर देते हैं। मतलब हम सब में इन तकनीकों को समझने की, उन्हें आलोचनात्मक नजर से देखने की और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है और नक्शे या एल्गोरिदम हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा के कुछ जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटें, तो पहला तो यही है कि स्थानिक कंप्यूटिंग सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं है, ये कंप्यूटिंग का एक नया दौर है, एक बुनियादी बदलाव। ठीक वैसे ही जैसे कभी पर्सनल कंप्यूटर आया था या इंटरनेट आया था, ये डिजिटल और भौतिक दुनिया को मिला रहा है।
बिल्कुल। दूसरा जरूरी संदेश यह है कि ये तकनीक जानकारी और हकीकत के बीच की जो सीमाएं हैं उन्हें धुंधला कर रही है। एक तरह की मिली जुली हाइब्रिड वास्तविकता बन रही है। जैसे गूगल मैप्स हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो उस रास्ते के हमारे अनुभव को भी बदल देता है, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
AR चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। किताब में भी कहा गया है कि स्थानिक कंप्यूटिंग का सबसे गहरा असर चीजों की नकल करने में नहीं, बल्कि ऐसी नई हाइब्रिड रियलिटी बनाने में है जो इंसानी क्षमताओं को उन तरीकों से बढ़ाए जो पहले मुमकिन ही नहीं थे। मतलब सिर्फ कॉपी नहीं, कुछ नया और बेहतर बनाना।
तीसरा, स्थानिक डेटा एक दोधारी तलवार है। ये हमें जबरदस्त सुविधा देता है, क्षमता देता है, लेकिन साथ ही हमारी निजता और हमारी स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा भी है। ये जानना कि कोई व्यक्ति कहाँ है या कहाँ गया है, उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल पहचान और डेटा सुरक्षा पर इतनी बहस चल रही है, ये मुद्दा और भी अहम हो जाता है।
चौथा, जिसकी हमने अभी बात की, स्थानिक साक्षरता की जरूरत। हमें सिर्फ इन तकनीकों का इस्तेमाल करने वाला नहीं बनना है, बल्कि एक जागरूक और सवाल पूछने वाला नागरिक बनना है। समझना होगा कि ये कैसे काम करती हैं, इनके फायदे नुकसान क्या हैं, समाज पर क्या असर पड़ रहा है।
और पांचवा, ये सवाल कि क्या ये तकनीक हमारी मदद कर रही है या हमें कमजोर बना रही है। किताब का नजरिया थोड़ा आशावादी लगता है। उनका मानना है कि स्थानिक कंप्यूटिंग का असली मकसद इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना होना चाहिए, उन्हें खत्म करना नहीं। जैसे शिक्षा में मुश्किल चीजें समझाने के लिए,
हाँ,
या स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की मदद के लिए। एक और लाइन है जो इस बात पर जोर देती है, हर स्थानिक कंप्यूटिंग सिस्टम असल में मानव स्थानिक बुद्धि का ही विस्तार है, और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो इंसान के सोचने समझने के प्राकृतिक तरीकों से कितनी अच्छी तरह जुड़ती है और उन्हें बेहतर बनाती है। मतलब तकनीक को इंसान के हिसाब से ढलना चाहिए।
ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इन तकनीकों का इस्तेमाल करते कैसे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं कि हम कब और किसके साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं। नेविगेशन ऐप्स को सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय थोड़ा सोच सकते हैं, क्या यह हमेशा सबसे अच्छा रास्ता ही बताता है?
क्यों हाँ, और प्रोफेशनल जिंदगी में तो इसके बेशुमार उपयोग हैं। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो GIS की मदद से दुकान के लिए सबसे अच्छी जगह चुन सकता है। लॉजिस्टिक्स कंपनियां डिलीवरी रूट को ऑप्टिमाइज करके समय और पैसा बचा सकती हैं। शहर के प्लानर्स ट्रैफिक जैम कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान प्रिसिजन एग्रीकल्चर से सही जगह पर सही मात्रा में पानी और खाद डालकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स सर्जरी की प्लानिंग ज्यादा सटीकता से कर सकते हैं।
बहुत सामग्री
सही जगह पहुंचाने में मदद करती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इसका इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं कि किन इलाकों में स्कूल या अस्पताल जैसी सुविधाओं की कमी है या कहाँ प्रदूषण ज्यादा है, ताकि उन समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके। मतलब मूल बात यह है कि ये तकनीकें हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती हैं और शायद उसे बेहतर बनाने में भी, अगर हम उनका इस्तेमाल सोच समझ कर करें।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिलती है?
मेरे लिए शायद ये एहसास कि कैसे ये तकनीक, जो अक्सर हमें दिखती भी नहीं, हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को चुपचाप बदल रही है, और हमें ज़रूरत है कि हम आँखें खुली रखें और समझें कि ये बदलाव हमें किस तरफ ले जा रहा है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बदलाव है।
और मेरे लिए वो जो तकनीक की क्षमता है और उससे जुड़ी जिम्मेदारी है, उसके बीच का संतुलन, वो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। फायदे तो बहुत दिखते हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, खासकर निजता वाली। स्थानिक साक्षरता सच में अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल युग में जीने के लिए एक जरूरी स्किल बन गया है। हमें सवाल पूछते रहना होगा।
बिल्कुल, हम इन तकनीकों को सिर्फ एक उपभोक्ता की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह देखना होगा और उनके जो बड़े प्रभाव हैं उन पर विचार करना होगा। किताब हमें यही सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक पंक्ति जो शायद पूरी बात को समेट देती है, स्थानिक कंप्यूटिंग की सफलता का असली पैमाना उसकी तकनीकी बारीकी नहीं, बल्कि मानव जीवन को अधिक सार्थक, जुड़ा हुआ और पूर्ण बनाने की उसकी क्षमता होगी।
वाह, ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए ताकत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।